मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सबके लिए एक विशेष सूचना है। सूचना तो मैं हर शुक्रवार को देता ही हूं, वो अभी दूंगा, लेकिन आज विशेष सूचना है और वह यह कि आज से एक सप्ताह के लिए यानी कि अगले शुक्रवार के लिए डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक या दो विषय लेंगे और उसी एक या दो विषय पर विस्तार के साथ बात करेंगे। यानी कि अभी इससे पहले हम आप जानते हैं कि जो न्यूज होते थे रेडियो के, दूरदर्शन के और अखबारों में जो न्यूज छपती थी, पहले उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता था, थोड़ा सा विश्लेषण भी देने की कोशिश करता था और इसके बाद फिर हम लोग एक मुख्य विषय लेते थे और उस पर बातें करते थे। एक सप्ताह के लिए अब इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। जो करंट न्यूज है आकाशवाणी, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के, उस पर बातें नहीं होंगी। अब सीधे हम लोग एक या दो विषय लेंगे और उन एक या दो विषयों पर ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे और वह जो कोशिश होगी वह डेफिनेटली मेन एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई संबंध प्री से होगा ही नहीं। और ये आप जानते ही हैं कि अगर आपको सही मायने में सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो वह तैयारी मेंस की होती है, प्री की नहीं। तो मित्रों, यह थी आज की विशेष सूचना। अब मैं आता हूं साप्ताहिक सूचना पर जो मैं आपको हर शुक्रवार को प्रोवाइड करता हूं और वह यह फ्रेंड्स की जो डेली ऑडियो लेक्चर है, आप जानते हैं कि शनिवार और रविवार को नहीं आता है, नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो शनिवार को आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसा कि इससे पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र, योजना के दो आर्टिकल्स, एक हिंदी एक इंग्लिश, और इसी तरह से कुरुक्षेत्र के दो आर्टिकल, एक इंग्लिश और एक हिंदी आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही एक वीकली क्वेश्चन होता है जिसे साप्ताहिक प्रश्न कह सकते हैं, ताकि आप मेन एग्जामिनेशन में उत्तर कैसे लिखेंगे इसका अभ्यास कर सके। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैं प्रश्न आपको देता हूं, मेरी कोशिश होती है कि प्रश्न ऐसा हो, उसका टॉपिक ऐसा हो या कह लीजिए सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके मेंस में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावनाएं हों। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी अक्टूबर में जो मेंस के एग्जाम हुए हैं, अगर आप उनके अनसॉल्व पेपर उठा करके देखें और जो आपको वीकली क्वेश्चंस दिए गए थे उनकी लिस्ट देखें पिछले साल सवा साल की, तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मैं प्रश्नों की तो बात नहीं कहता कि ज्यों के त्यों प्रश्न पूछ लिए गए हैं, देखिए वो तो संभव भी नहीं है, ये तो संयोग ही है कि कुछ ऐसा हो जाए। अदरवाइज जो सब्जेक्ट या टॉपिक है वो बहुत से साप्ताहिक प्रश्नों से ही लिए गए हैं और ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और कोई जादू भी नहीं है, एक सामान्य समझ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, या यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी फीलिंग की भी बात होती है कि जब किसी भी टॉपिक को मैं देखता हूं तो कुछ ऐसा एहसास सा होने लगता है कि नहीं नहीं ये तो सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना हो सकती है। और बस वहां से मैं उस विषय को उठा लेता हूं और फिर उस विषय को उठाने के बाद क्वेश्चन किस तरीके से उस पर बनेगा बनाकर आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। तो मित्रों, आपको शुक्रवार को वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, शनिवार को, और साथ ही साथ शनिवार को जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस दिया जाएगा। मित्रों, आइए अब इसके बाद हम लोग आते हैं आज के विषय पर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आज का मुख्य विषय, अब है आज का विषय, क्योंकि जो भी है वह मुख्य ही है, क्योंकि हम किसी दूसरे विषय के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं न्यायाधिकरणों के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आइए यहां से शुरू करते हैं। न्यायाधिकरणों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड्स कि आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो मेंस में हमेशा जुडिशरी पर एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये बात अलग है कि ज्यादातर मैंने पाया है कि उसका संबंध जिसे न्यायालयों की एक्टिविज्म कह लीजिए, अतिरिक्त सक्रियता कह लीजिए, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो दूसरे प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के लिए जो न्यायाधिकरण से संबंधित प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और उसका कारण है, उसका सीधा सा कारण ये है कि फ्रेंड्स की जो विधि आयोग है, एक लॉ कमीशन बनाया जाता है, लॉ कमीशन ने अभी अक्टूबर में ही अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, 272वीं रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने उस आयोग ने न्यायाधिकरणों की कार्य प्रणाली, उनकी समस्याएं और उनकी सीमाओं के बारे में चर्चा की है। तो चूंकि विधि आयोग की रिपोर्ट है और वो अखबारों में तो बहुत ज्यादा नहीं छपी, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, कुछ अखबारों ने उस पर चर्चा भी की थी, हो सकता है कि आप इसके बारे में न जानते हो, या जानते भी हो तो शायद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एंगल से न जानते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, इस विषय को टेकअप किया जाना चाहिए और इस पर कुछ बातें होनी चाहिए। तो मित्रों, मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में जो न्यायाधिकरणों की जो समस्याएं हैं, इन पर थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एक रेफरेंस के लिए या यूं कह लीजिए संदर्भ के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ट्रिब्यूनल्स के गठन की बात नहीं थी कि इस तरह से न्यायाधिकरणों की का गठन किया जाएगा। ये सच पूछे तो ये सब कुछ बाद में हुआ है, और खासकर जो आपके 1976 में आपातकाल के दौरान एक संशोधन किया गया था संविधान में, 42वां संशोधन, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और इस पर आपकी अच्छी जानकारी होनी भी चाहिए 42वें संविधान संशोधन के बारे में। उस 42वें संविधान संशोधन में एक नए भाग को जोड़कर और फिर इसकी व्यवस्था की गई थी, और इनको नाम दिया गया अधिकरण। उसमें दो अनुच्छेद रखे गए, 323 क और 323 ख, ये भी आपको याद होने चाहिए, अच्छा रेफरेंस है, 323 ए और 323 बी। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है फ्रेंड्स कि जो 323 ए है, उसने पार्लियामेंट को यह पावर दिया कि सेंटर में या राज्यों में जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, या जो लोकल बॉडीज की सर्विसेज होती हैं, या पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां होती हैं, इनमें यह देखा गया है कि सर्विस को लेकर के बहुत से डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, है ना, किसी को अपनी पदोन्नति न होने से शिकायत है, किसी को नियुक्ति की शिकायत है, तो इन शिकायतों का निराकरण कैसे हो? न्यायालय के ऊपर छोड़ देते हैं तो उस पर बहुत अधिक बोझ भी हो जाएगा, फिर ये थोड़ी सी एक विशेष नॉलेज की भी मांग करते हैं न्यायाधीशों के लिए। तो उसमें व्यवस्था की गई कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार चाहे तो वो इस तरह के न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, राइट। तो ये था नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों तक सीमित था 323A। इसके बाद जो 323B है, उसमें उन्होंने और भी ज्यादा मामलों पर अधिकार दिए हैं कि ठीक है, ये तो प्रशासनिक मामले हैं, इस पर तो ट्रिब्यूनल्स बनाए ही जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार जरूरी समझती है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही विशेषज्ञता की मांग करती हैं, या उनके मामले बहुत ज्यादा न्यायालयों में लंबित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी वो ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। तो इस तरह के कुछ, जैसे टैक्सेस के बारे में, फॉरेन करेंसी के बारे में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, लेबर डिस्प्यूट के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में, इस प्रकार से कुछ उसने और विषय दिए, इस पर भी अगर चाहे तो न्यायाधिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो मित्रों, सीधी सी बात है कि जो केंद्र सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र हैं उसमें वो अपने ढंग से गठन कर सकती है, और राज्य सरकार के जो अपने अधिकार क्षेत्र हैं वहां वो अपने ढंग से इनका गठन कर सकती है। तो ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में इसका उद्देश्य बताया, और साथ ही साथ हमारे संविधान में किस तरह की व्यवस्था है इसके बारे में भी जानकारी दी। अब आप देखिए कि जो विधि आयोग की रिपोर्ट आई है, जो हमारे आज के विषय का मुख्य बिंदु है, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि देखिए आप अलग अलग चीजें सुनते हैं। न्यायालय, जुडिशरी आप सुनते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये एक न्यायालय के सीरीज में आती है, राइट। ये जुडिशरी है हमारी मेन। इसके बाद आप अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स, ये ट्रिब्यूनल्स अलग से हटकर है, इससे हटकर है, ये मतलब उस न्यायालय की परिधि में नहीं आते हैं, एग्जैक्ट न्यायालय की परिधि में नहीं आते। अभी आप आगे चल करके देखेंगे, क्योंकि इन्हें न्यायालय जैसी स्वतंत्रता नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के तहत उस तरीके से काम नहीं करते, बावजूद इसके कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। मतलब आप इस ये भी नहीं कह सकते कि एग्जीक्यूटिव के हिस्से है, ये जुडिशरी के हिस्से ही, लेकिन थोड़े से अलग तरीके के हैं, जिन पर विधि आयोग ने ध्यान भी आकर्षित किया है, अभी हम बात करेंगे। इसके बाद होते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो शेयर मार्केट को देखती है, तो ये रेगुलेट करने का काम करती है, नियामक है, ये देखती है कि जो चीजें हो रही हैं वो ठीक ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही, उन पर निगरानी रखती है। देखिए जो न्यायाधिकरण है वो निगरानी नहीं रखती, न्यायाधिकरण का मूल काम है कि जब उसके सामने कोई समस्या पेश की जाती, कोई विवाद आता है, तो वह उसका निपटारा करती है, यानी शिकायतों को सुनती है। नो डाउट कि जो नियामक आयोग है वो भी शिकायतों को सुनती हैं, लेकिन वो रेगुलेट भी, वो देखती भी है, निगरानी भी करती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसके बाद आप सुनेंगे विशेष अदालतें, ये चौथी तरह की चीज है। विशेष अदालतों का मतलब है कि सरकार को लगता है कि किसी मामले को निपटाने के लिए कुछ अलग से न्यायालय बनाना पड़ेगा, तो उस पर वो न्यायालय का गठन कर भी देती है। तो इस तरह के आप देख, आपने इस तरह के न्यायालय के गठन के बारे में बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलता भी होगा। फिर वो जो लोक अदालतें हैं वो हैं, वो न्यायालय के हिस्से हैं, जो मैंने पहली बार बात की थी वो इसमें हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे। तो मैं आपको केवल एक डिफरेंस बता रहा हूं, सामान्य अंतर, ये जो अंतर मैं बता रहा हूं आपको, सामान्य अंतर है कि जब भी आप इनसे संबंधित कोई आर्टिकल पढ़ें तो आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि इनमें फर्क है, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, हालांकि सुनने से एक जैसा लगते हैं। साथ ही साथ जब हम इनके डिसीजंस को पढ़ते हैं, क्योंकि यहां भी न्यायालय है, बकायदे सुनवाई हो रही है, फिर ये डिसीजन दे रहे हैं, वो डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ फिर अपील भी की जा रही है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उसी जैसे होंगे, जबकि उस जैसे हैं नहीं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा न्यायाधिकरणों के बारे में बात करते हैं। मित्रों, अभी जो विधि आयोग की 272वीं रिपोर्ट आई है, उस 272वीं रिपोर्ट में उसने कुछ सवाल उठाए हैं, राइट। देखिए पहला सवाल तो यही है जो बहुत ही मौजूद सवाल है कि अब न्यायाधिकरणों के पास भी जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। हालांकि उनके यहां मामलों को निपटाने का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है, 94% बहुत अच्छा है, मतलब उनके पास मामले आते हैं और उसमें वो 94% मामलों का निराकरण कर देते हैं। इसके बावजूद भी उनके पास इतने इकट्ठे होते चले जा रहे हैं कि लगभग 3.5 लाख मामले उनके पास पेंडिंग हो गए हैं, 3.5 लाख मामले आप देख रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए कि किनके पास सबसे ज्यादा पेंडिंग है, ऐसे अधिकरण जो इनकम टैक्स के मामलों को निपटा रहे हैं, ऐसे अधिकरण जो सीमा शुल्क और सेवा कर इनसे संबंधित जो मामले हैं, अपीली न्यायालय हैं, वहां लटके हुए हैं। तो इससे साफ लगता है कि जो रुपयों पैसों वाला जो मामला है, ऋण वसूली अधिनियम के तहत दुनिया भर के जो केस दायर किए जा रहे हैं उनके पास मतलब आयकर के मामले लगभग 1 लाख लंबित है, सीमा शुल्क और इनके मामले लगभग 90,000 लंबित है, और इसी तरह से ऋण वसूली के लगभग 75,000 लंबित है। तो आप देखिए कि इन दोनों को ही जोड़ दीजिए तो पता लगेगा कि 2.5-3 लाख तो इन दोनों के ही हो गए, जबकि 3.5 लाख टोटल है। यानी कि जो दीवानी टाइप के जो मामले होते हैं, धन के जो मामले होते हैं, वो सबसे ज्यादा लंबित है और वो ज्यादा उलझाव वाले भी होते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि ऐसा कुछ हो भी जाता है। इसका कारण क्या है? तो विधि आयोग ने लिखा, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसके जो कारण है वो वही है जो दूसरे न्यायालयों के हैं, जैसे इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यहां जो न्यायालयों की, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उनकी जो सेवा शर्तें भी हो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। फिर वही जो ये दूसरे न्यायालय में भी होता है फ्रेंड्स, कि वकील आ रहे हैं और बहस हो रही है और तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, अभी ये नहीं काम हुआ है, ये नहीं किया काम हुआ है, तो वो लगातार टालने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मामले लटकते चले जाते हैं। एक इधर उन्होंने ध्यान दिया कि जो अपॉइंटमेंट है वो तुरंत होने चाहिए और उसने अपने रिकमेंडेशन दी है कि पद जैसे ही खाली होने वाले हों तो उसके 6 महीने पहले ही उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए। लेकिन सच पूछे तो ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए नहीं कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी जब नियुक्ति के मामले हैं वो भी लटके पड़े रहते हैं और वहां तक कितने सारे पद खाली हैं। दूसरी जो इन्होंने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि देखिए ये भी न्यायालय का काम कर रहे हैं लेकिन इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जो अपॉइंटमेंट है, वो न्यायाधीशों की तरह नहीं है जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। उनके पास सेपरेशन ऑफ पावर के तहत उनकी जो नियुक्ति है, सेवा शर्तें, सारी चीजें न्यायालय खुद निर्धारित करते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां जो इनका निर्धारण है या इनका कंट्रोल है कह लीजिए, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। इनमें जो हेड होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, इनके कौन सदस्य होंगे, ये सब की नियुक्ति सरकार करती है। अब आप सोच करके देखिए, जैसे प्रशासनिक अधिकरण को ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जितने भी लोग जाएंगे बट नेचरले कि वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होंगे और वहां जो न्यायाधीश हैं, जो उसके मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो सब के सब सरकार के द्वारा किए गए हैं, यानी कि सरकार के ही खिलाफ अब वो केसेज सुन रहे हैं, अपील सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का दबाव उन पर हो सकता है, यानी कि जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंसी चाहिए वो इंडिपेंडेंसी यहां आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पदों की जहां तक बात है फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अच्छा रेफरेंस है, आप चाहें तो इसे कोट कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो, कि जिला स्तर पर यह है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो फोरम बनाया जाएगा उसमें 3 सदस्य होने चाहिए, 3 सदस्यों का वो फोरम होता है। और आयोग ने मेंशन किया है कि शायद ही कोई फोरम हो जिसमें ये कोरम पूरा होता है, यानी कि 3 सदस्य हों, अधूरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप सोचकर देखिए कि कोई भी संस्थान कैसे काम कर सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने एक और ध्यान आकर्षित किया है और वो है कि ये जो न्यायाधिकरण होते हैं इनके खिलाफ भी अपील की जाती है। इनके खिलाफ अपील कुछ तो कुछ न्यायाधिकरणों के खिलाफ उच्च न्यायालय में हो जाती है, कुछ में उच्च न्यायालय में भी नहीं हो सकती। इनका जो लेवल होता है वो उच्च न्यायालय का होता है, हाई कोर्ट का, तो उसके लिए आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचता है, सुप्रीम कोर्ट आपको जाना होगा, राइट। और कुछ इनके अपने अपील न्यायालय होते हैं, अपील आप वहां अपील कीजिए। और जो अपीलीय न्यायालय होते हैं पटने चले कि उसके ज्यादातर हेडक्वार्टर दिल्ली में होते हैं। तो आयोग ने सुझाव दिया कि इनकी ब्रांचेस भी बनाई जाएं, दूसरे कुछ राज्यों में भी इनकी ब्रांचेज हो ताकि लोगों को आसानी हो सके। और उसने ये भी ध्यान आकर्षित किया है कि ये जो अपीलीय न्यायालय हैं इनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ज्यादातर अपीलीय न्यायालयों में एक या दो पद ही होते हैं। और उसने दुख व्यक्त किया है कि उनके एक और दो पद भी जो हैं वो भी सही समय पर नहीं भरे जा रहे, वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे न्यायाधिकरण है, जिन उद्देश्यों से इनको एस्टैब्लिश किया गया था, इनको गठित किया गया था, वो उन उद्देश्यों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु थे फ्रेंड्स, जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। और एक सजेशन देना चाहूंगा कि यदि आपको कहीं इसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है, आपको मिलेगा, मैगजीन्स में मिलेंगे और जगहों पर मिलेगा, तो आप इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में मानकर चलें और उसके जो इम्पॉर्टेंट आपको बिंदु मिलते हैं उन्हें नोट करते भी जाएं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद मित्रों आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आपके ये जो छुट्टी के 2 दिन हैं ये बहुत सुखद तरीके से बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।